नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। न्यूजीलैंड के उत्तर में पपरोआ में रविवार को एक कार रेस प्रतियोगिता के दौरान हुए हादसे में 15 वर्षीय चालक और सह चालक की मौत हो गई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रतियोगिता के दौरान चालक की कार सड़क से फिसलकर नदी में जा गिरी थी। पुलिस ने बताया कि हादसे में 15 वर्षीय ब्रुकलिन होरन और 35 वर्षीय टायसन जेमेट की मौत हो गई। न्यूजीलैंडवासी 16 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन वो कुछ शर्तों के तहत बंद सड़कों पर मोटर रेस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। भारतीय मूल के जाने माने कंप्यूटर इंजीनियर और प्रोफेसर अशोक वीर राघवन को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए एडिथ और पीटर ओ डॉनेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो टेक्सास के सर्वोच्च शैक्षणिक पुरस्कारों में से एक हैं। राज्य के उभरते शोधकर्ताओं को ये पुरस्कार प्रदान करने वाली टेक्सास एकेडमी ऑफ मेडिसिन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा कि राइस यूनिवर्सिटी के जॉर्ज आर ब्राउन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के प्रोफेसर वीर राघवन को इसके लिए चुना गया था। उन्हें अदृश्य को दृश्यमान बनाने के प्रयास करने वाली उनकी परिवर्तनकारी इमेजिंग प्रौद्योगिकी के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार चिकित्सा इंजीनियरिंग, जैव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार में अग्रणी कार्य करने वाले राज्य के प्रतिष्ठित शोधकर्ताओं को प्रतिवर्ष दिया जाता है। मूल रूप से चेन्नई के रहने वाले वीर राघवन ने ये पुरस्कार मिलने के बाद पीटीआई भाषा से कहा, मैं ये पुरस्कार प्राप्त कर बहुत खुश हूँ। ये उस अद्भुत और नवीन शोध के सम्मान है जो राइस यूनिवर्सिटी में कंप्यूटेशनल इमेजिंग लैब में कई छात्रों, पोस्ट डॉक और वैज्ञानिकों ने पिछले दशक किया है। वीर राघवन अपने शोध के जरिए ऐसे इमेजिंग परिदृश्यों के समाधान मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं जब प्रकाश के बिखरने के कारण इमेजिंग प्रौद्योगिकी किसी व्यक्ति को देखने में असमर्थ होती है। ऐतिहासिक स्थल के बेहतर रखरखाव और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे कर्मचारियों की वजह से 6 दिनों तक बंद रहे विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर को रविवार को आगंतुकों के लिए फिर से खोल दिया गया। इस 330 मीटर ऊंचे टावर के संचालक ने एक बयान में कहा कि नवीकरण कार्य के लिए 2031 तक महत्वाकांक्षी 38 करोड़ यूरो का निवेश आवंटित करने का वादा किया गया था, जिसके बाद श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली कर्मचारी संघों के साथ एक समझौता हुआ। संचालक ने इस सप्ताह वेतन को लेकर भी बातचीत शुरू की है, जिस अगले महीने अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। हड़ताल पर गए कर्मचारियों ने टिकट बिक्री से राजस्व के अनुपात में वृद्धि की मांग की है। ये 135 साल पुराना टावर 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस खेलों और अगले पैरालंपिक में प्रमुखता से नजर आएगा। पेरिस में ओलंपिक और पैरालंपिक पदकों में ऐतिहासिक स्थल से लिए गए लोहे के षटकोणीय टुकड़ों के अंशों को मिलाया गया है। एफिल टावर आमतौर पर साल में 365 दिन खुला रहता है। पिछले साल देश के पेंशन प्रणाली में सुधार की सरकार की योजना के खिलाफ पूरे फ्रांस में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के दौरान स्मारक को 10 दिनों तक आगंतुकों के लिए बंद कर दिया गया था। पाकिस्तान में अरबी भाषा प्रिंट हुआ कुर्ता पहनकर बाहर निकलना एक महिलाओं को भारी पड़ गया। वो अपने पति के साथ एक रेस्टोरेंट में गई थी, जहां कुछ लोग महिला पर ईश निंदा का आरोप लगाते हुए नारेबाजी करने लगे। ये मामला सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में है। ईश निंदा का मतलब किसी धर्म या मजहब की आस्था का मजाक बनाना माना जाता है। इन लोगों को महिला के कुर्ते पर अरबी भाषा लिखे होने से एतराज़ था, जिसे कुछ लोग कुरान की आयतें भी समझ रहे थे। मामला पुलिस बुलाए जाने के बाद शांत हुआ। पुलिस ने सोशल मीडिया पर इस मामले से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसमें देखा जा सकता है कि महिला को कुछ लोगों ने घेरा हुआ है। वो नारे लगा रहे हैं और महिला अपने हाथों से अपना चेहरा छिपा रही है। सोशल मीडिया पर एक महिला पुलिस अधिकारी की तारीफ भी की जा रही है, जिसे महिला को भीड़ से बाहर ले जाते हुए देखा गया था। पुलिस ने बताया कि महिला अपने पति के साथ खरीदारी के लिए गई थी। उसने कुर्ता पहना था जिसपे कुछ शब्द लिखे थे। जब कुछ लोगों ने इसे देखा तो उन्होंने उसे कुर्ता हटाने के लिए कहा। ये जानकारी पंजाब पुलिस के एक्स अकाउंट पर साझा की गई है। अमेरिका में रविवार दोपहर को एक शख्स ने कूदकर इजराइल दूतावास के सामने आग लगा ली। इस घटना की पुष्टि अथॉरिटी द्वारा की गई है। आग पर काबू पाने के लिए उस व्यक्ति को नज़दीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उस व्यक्ति ने आग लगाने से पहले कहा कि अब मैं गाजा के नरसंहार में शामिल नहीं होऊंगा। साथ ही उसने बार बार कहा कि फिलिस्तीन को मुक्त कराओ। उसके पास खड़े कुछ अधिकारियों ने 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया और आग बुझाई। टास्क एंड पपर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार घटना के दौरान पुलिस अधिकारियों ने उस व्यक्ति पर बंदूक भी तान दी थी। हालांकि अभी तक उस व्यक्ति की पहचान की पुष्टि नहीं हो पाई और उसकी पहचान को सार्वजनिक भी नहीं किया गया है। एक अधिकारी ने कहा कि कोई भी दूतावास का कर्मचारी घायल नहीं हुआ है और सभी लोग एकदम सुरक्षित हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।